इस कारण से यह बच्चा बच गया। कथंचित, तो कैसे बच गया वास्तव में सोचने लायक बात। गोप लोग तो देखे थे पुतना के शरीर को, उस विशाल शरीर को, भयानक दांत, आंख, नाक सबको देखे, किसी तरह ये बच्चा बच गया उससे। कथंचित शब्द एक अवसर देता है भक्तों को सोचने के लिए उपनंद महाराज के हृदय के विषय में, किसी तरह बच गया। लेकिन पूतना के विषय में करे किसी तरह से बच गया, आगे में कहेंगे भगवान हरि के अनुग्रह से, लेकिन सब जगह वही बात है, किसी तरह हमारे भाग्य से, भगवान की कृपा से बच गया। तो कोई बचने की संभावना थी? 6 दिन का बालक पूतना के चंगुल में आ गया था और फिर भी बच गया। वह इष्ट गोष्ठी क्या हो रही थी? वास्तव में कृष्ण कथा चल रही थी, कृष्ण के हित की बात हो रही। हरे अनुग्रहात नूनम अनश्चो परिणापतत। तो राक्षसी बालघ्नि पूतना के आक्रमण से बच्चा बच गया, और देखो हरे अनुग्रह, हरे अनुग्रहात हरि के अनुग्रह से, जो उत्पातों का नाश करते हैं, जिनका नाम लेने से मंगल होता है, तो हरि के अनुग्रह से अनह वह छकड़ा सकट ऊपरी न अपतत। वो छकड़ा गिरा लेकिन बच्चे पर नहीं गिरा। देखो भगवान की दया। हम लोग जो कीर्तन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान विष्णु का, तो उनके कृपा से वो छकड़ा गिरा लेकिन बच्चे पर नहीं गिरा। देखो आश्चर्य। और उनको ये पता अब तक नहीं है कि यही गिरा दिया था छकड़ा। अपने कोमल कोमल पैरों से सकट को कृष्ण ही उलाट दी, कृष्ण उलाटे थे, लेकिन उपनंद महाराज को अब तक ये बात मालूम नहीं, किसी को कभी नहीं मालूम होगी। सकट गिरा, कोई भूत बैताल चाहे प्रेत गिरा दिया था, लेकिन देखो बच्चे पर नहीं गिरा। ऊपरी न अपतत। हरे अनुग्रहात नूनम, और नूनम का अर्थ निश्चितम, इसमें संदेह नहीं है कि भगवान हरि की कृपा से ही इस बच्चे के ऊपर सकट नहीं गिरा। कभी कभी हरिश्वर जी लिखते हैं कितने अज्ञान में गोप हैं। ये नहीं जान रहे हैं कृष्ण को कि इनकी कृपा से ही नहीं गिरा वो, या इनकी कृपा से ही गिरा था वो। लेकिन यह अज्ञान स्वरूप शक्ति के कारण है, चित शक्ति की वृत्ति, भक्ति है, स्नेह है। हम लोग जैसे भगवान को भूले हुए हैं, यह तो महामाया के कारण भूले हुए, अज्ञान के कारण। लेकिन ब्रजवासी जो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं, तो स्वरूप शक्ति से मोहित होते हैं, वह प्रेम ही उनको विस्मृत करता है, और वह विस्मृति ही वास्तविक स्थिति है उनकी, यही वास्तविक पोजीशन। उपनंद महाराज की भाषा निकल रही है, विचार कीजिए। एक बार कहते हैं कथंचित, किसी तरह से मुक्त हो गया उस बालघ्नि राक्षसी से, और भगवान हरि की कृपा से छकड़ा इसके ऊपर नहीं गिरा, वो बच्चा वहीं था। उसको दिखा कर कह रहे हैं कि बाल बाल बच गया। चक्रवाते न नीतो यम दैते न विपदं दियत। और उस चक्रवात से, चक्रवात के रूप में आए हुए उस राक्षस के द्वारा अयम यह कृष्ण विपदम वियत नीत। वियत नीत, वियत कहते हैं ऊंचे आकाश को, बहुत ऊंचा आकाश में ले गया, जो विपदम है। वी का अर्थ है वी नाम पक्षिणाम पदम, वी का अर्थ पक्षी होता है, जो पक्षियों का स्थान है, जहाँ पक्षी उड़ते हैं उसको विपद कहते हैं, अथवा अप्रतिष्ठित स्थान, उसका अर्थ है कि जहाँ संकट का स्थान, विपद। विपद में ले गया, पक्षियों के स्थान में ले गया, चाहे संकट के स्थान में ले गया, वियत आकाश में ले गया, बहुत ऊंचा। लेकिन भगवान की दया देखो, और ऊपर से यह बच्चा गिरा तो कहाँ गिरा? शिलायम पतितः, पत्थर पर गिरा। पर परित्रातः सुरेश्वरैः, पर भगवान विष्णु ने रक्षा किया बच्चे। यहाँ भी सुरेश्वर जो बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो भगवान के लिए आदर के कारण, भगवान विष्णु ने रक्षा किया या भगवान शिव ने बचाया, देवताओं ने बचाया, बच्चे पत्थर पर गिरा, एक तो बहुत ऊंचा से गिरा और दूसरे पत्थर पर गिरा। तो वास्तविक बात यह थी कि भगवान तृणावर्त को पत्थर पर गिराए थे और वे पत्थर से टच नहीं किए थे, उसका गला पकड़े पकड़े वे तो डर करके गिरे, गिरा वो तो शीर्ण विशीर्ण हो गया, कई खंड में चक्रवात हो गया तृणावर्त। लेकिन वो सब चीजें नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं देखो कितना ऊंचा ले गया था और बच्चा गिरा उतना ऊंचा से गिरा और पत्थर पर गिरा, लेकिन भगवान की कृपा है बच गए। यह प्रश्न उठाया गया है कि जब भगवान बचा ही रहे हैं तो आगे भी बचा लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं जब बचा रहे हैं तो आगे भी बचाएंगे, लेकिन अनिष्टा संकीर्ण बंधु हृदयानी, श्री कालिदास ने कहा है कि बंधुओं का हृदय अनिष्ट की आशंका करता रहता है, जिसके प्रति जिसका प्रेम होता है उसके अनिष्ट की आशंका भरी रहती है। कोई अपने प्रेमी को आप ट्रेन से विदा कीजिए लेकिन मन में शंका होगी कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपना प्रिय जा रहा है तो इस तरह से आशंका अपने हृदय में होती है। तो कृष्ण प्राणों से भी प्रिय हैं, इसीलिए इनके अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। पहले विपत्तियों को गिना रहे, ये विपत्ति आई। जन्म म्रियेत द्रुमयोरंतरम प्राप्य बालक असावन्य तम वापी तदप्यच्युत रक्षणम। और अभी अभी देखिए, केवल 6-7 दिन पहले की बात है, द्रुमयो अंतरम प्राप्य अपि बालक जन्म म्रियेत, दोनों वृक्षों के, विशाल वृक्षों के बीच में भी पड़ करके उनके गिरने पर भी ये बालक नहीं मरा, और जबकि इतने फैले हुए शाखा वाले थे कई 100 बच्चे मर जाते उसमें दब करके, लेकिन यह बच्चा तो नहीं मरा। इसके साथ अन्य तमह वापी, दूसरा भी कोई बच्चा नहीं मरा। तद अपि अच्युत रक्षण, यह भी अच्युत के द्वारा की गई रक्षा, कृष्ण की विष्णु के द्वारा की गई रक्षा, भगवान बचाए। बहुत ही आशंका है मन में, इसलिए म्रियेत शब्द लगा रहा है। भगवान के लिए इस प्रकार का शब्द नहीं आना चाहिए, लेकिन स्नेह है, बच्चा मरा नहीं, भगवान बचा लिए। इतने बड़े वृक्षों के गिरने पर तो हाथी भी मर जाते दब करके, वास्तव में छोटा बच्चा द्रुमयो अंतरम प्राप्त, दोनों वृक्षों के बीच में, और अन्य भी कोई बच्चा नहीं मरा वृक्ष के झटके से गिरने से, यह भी देखिए भगवान की दया। तो उनको ये पता रही था कि आपका बच्चा ही गिराया है तो थोड़े मरने देगा किसी को तो ढंग से गिराएगा इस तरह की सभा जहां हो, भगवान के प्रति लबालब हृदय भरा हो प्रेम से, और आपस में बात किया जाए भगवान के प्रचार की, भगवान की रक्षा की, तो कितनी सुंदर सभा होगी। पहले उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, और इसके बाद वे विपत्ति गिना रहे हैं। अब कहते हैं, जावद औत्पातिको रिष्टो ब्रजम नाभिभवेदित तावद बालानुपादाय जास्यामोन्यत्र सानुगहा। और विपत्ति कब आएगी, उत्पात कब चालू हो जाएगा, कोई ठीक नहीं रहता है, पहले से कुछ पता नहीं रहता है। क्या पता था कि ये दो वृक्ष गिर जाएंगे, कोई आकर गिराया तब तो वृक्ष गिरे ना, तो उसको औत्पत्तिक आपत कहते हैं, विपत्ति, औत्पत्ति, औत्पत्तिक अरिष्ट। औत्पत्तिक अरिष्ट का है अर्थ है कि जिसका कोई कारण है, कोई मारने पर पड़ा हुआ है बच्चे को इसको उत्पत्ति कहते हैं, सकारण। तो कोई नया उपद्रव आने से पहले ही हम लोगों को यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए, कोई नया उत्पत्ति अरिष्ट आने से। जब तक ब्रजम ना भी भवेत, ब्रज को अभिभूत नहीं कर लेती है कोई विपत्ति कोई संकट, इसके पहले ही हम लोगों को भाग जाना चाहिए यहां से। सभी बच्चों को लेकर के तावत बालानुपादाय, अथवा कृष्ण को लेकर के बहुवचन बोल रहे हैं, बच्चों को लेकर के कृष्ण को लेकर के हम लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए, और अपने सानुगा अपनी स्त्रियों के साथ, अपने पुरोहितों के साथ, सेवकों के साथ, गौओं के साथ, सबके साथ पूरा समाज ही लेकर यहाँ से भागना है, यहाँ नहीं रहना है। कृष्ण की रक्षा की इतनी चिंता हो रही है। सानुगा और बालानुपादाय, बच्चों को लेकर के भाग। उपायादाय, बच्चों को बहुत सतर्कता से सुरक्षा से लेकर के भागना है, चले जाए दूसरी जगह। तो किसी ने कहा कि उपनंद महाराज, यह नीति है कि ना समीक्ष परम स्थानम पूर्वम आयतनम तेजेत। जब तक किसी नए स्थान का निर्णय न हो जाए कि यहाँ रहना है, तो उसके पहले पूर्व स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। तो छोड़ने को तो आप कह रहे हैं कि महाबन छोड़ देना चाहिए, लेकिन रहेंगे कहाँ छोड़ करके, क्या तो बताइए। पहले स्थान निश्चित कर लेना चाहिए कि हमको यहाँ रहना है, इसमें रहना है, तब अपना घर छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर द्वार छोड़ करके रोड पर हो करके और जो होने लगे, कहीं प्लॉट खरीदेंगे, कहीं ये करेंगे, रहेंगे ऐसा तो नहीं किया जाता है। पहले ले लेते हैं, पहले निश्चित कर लेते हैं कि यहाँ जाएंगे, तब अपना पूर्व स्थान छोड़ते। तो गोपो ने कहा कि ठीक है, आपकी बात एकदम स्वीकार है, क्योंकि सभी उपनंद महाराज के समान ही कृष्ण के प्रति वात्सल्य से भरे, सभी अनुभव कर रहे थे कि यहाँ बहुत विपद आ रही, सब लोग अनुभव कर रहे थे। क्योंकि गोप वृद्धा, शुरू में ही कहा गया गोप वृद्ध सब जुटे थे, वात्सल्य भाव से भरे, तो सबने कहा ठीक है, लेकिन कहाँ जाएंगे। तब उपनंद महाराज कहते हैं, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यद्री तृण भीरुधम। देश काल के ज्ञाता थे, पूरे ब्रज मंडल में वे घूमे थे कई बार और जानते थे कि कौन स्थान कैसा है। तो कहते हैं वृंदावन नामक एक वन है, वो तो पशव्य है, पशुनां हितम, वहाँ पशुओं का हित होगा। पशु के लिए चाहिए क्या, घास और पानी, मुख्य बात ये है। तो पशव्यम का अर्थ है वहाँ प्रचुर घास है और पानी है, और नव काननम वो नया वन है, वहाँ पहले से बहुत पशु रहे नहीं है। नया वन का मतलब यह नहीं है कि वो तत्काल में बनाया गया वन है, वो अनादिकाल से है, लेकिन फिर भी वहाँ के वृक्ष, वहाँ की लताएं बिल्कुल नवीन रहती हैं, जल बिल्कुल फ्रेश रहता है, स्वच्छ रहता है, पर्वत बहुत सुंदर हैं, इसलिए पुण्य शब्द लगा रहे हैं। पुण्यद्री तृण विरुद्ध, पुण्य पर्वत, परम पवित्र पर्वत है, और वहाँ की तृण घासें पूर्ण हैं, और विरुद्ध लताएं, अर्थात बहुत कंटीली झाड़ियां नहीं है, और बेकार पौधे तो वहाँ है ही नहीं वृंदावन में, जैसे इस समय सड़कों के किनारे लगे हुए विलायती बबुल कहते हैं इसको क्या कहते, इस तरह का तो एक भी कोई चीज नहीं है वृंदावन में, फालतू जो काम में न आवे किसी, ऐसा कोई तृण विरुद्ध लता नहीं, सब बहुत पावन है, सुंदर फल वाले छाया वाले वृक्ष हैं, लताएं बहुत सुंदर पुष्प देती हैं, फल देती हैं, और तृण बहुत ही सुंदर हैं, स्वादिष्ट तृण हैं, अच्छे अच्छे जिनको गौएं खा सकती हैं। और गोप गोपी गवाम सेव्यम, वो गोपों के लिए भी वृंदावन बहुत अच्छा है, गोपियों के लिए भी स्वच्छंद संचरण के लिए अच्छा है, तथा गौओं के लिए तो है, सबके लिए वो स्थान बहुत अच्छा है। उपनंद महाराज पहले से सब देख लिए थे, ये वृंदावन है कहाँ, मान लीजिए गोप पूछे कि इसका लोकेशन बताइए कहाँ है, तो उन्होंने कहा था कि यह महावन और नंदीश्वर के बीच में है और गिरिराज गोवर्धन इसका सेंटर है बीच में, ऐसा वो कहे दूसरे ग्रंथ में बात। वे लोग चले तो कहाँ पार किए जमुना को, इस विषय में भी लिखा गया है, कालिये ह्रद के दक्षिण, तो बाद में जहाँ जमुना जी, कालिये ह्रद तो बहुत चौड़ा था, यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, इसके बाद जो बहती हैं तो पतली धारा होती है और मथुरा के पहले इधर लगभग पानी घाट के पास पार किए, सारा समाज पार किया, तो कोई पुल से नहीं, नौकाएं थी, नौका से पार किए थे और गौएं तो ऐसे तैर करके पार कर गई, वो बाद में कथा आ रही। तो वृंदावन हम लोग आज जैसा मानते हैं कि यह एक योजन में चार कोस में वृंदावन फैला हुआ है, यह केवल यही वृंदावन नहीं है, वृंदावन पूरे ब्रजमंडल को कहते हैं और खास करके बरसाने नंदगांव उसको उस तरफ छोड़ करके, और बाकी गिरिराज जी का की जो सीमा है और ये खदीर वन कुमुद वन इत्यादि ये सब वृंदावन के अंदर, बहुत विस्तार का क्षेत्र, और जमुना जी के दोनों तट का प्रदेश वृंदावन, इसी के लिए उपनंद महाराज कहते हैं बहुत सुंदर देश है, सब प्रकार के सुंदर घास तृण लता वृक्ष से भरा हुआ, बहुत सुंदर सुंदर पर्वत है, तो वहां हम चलेंगे। यह सुनकर के समस्त गोप वृद्ध कहे वाह बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन कब चलना चाहिए, तो उपनंद महाराज ने कहा तत्राद्यैव जास्यामः सकटान् युङ्क्तमाचरम्, अभी और आज ही चलना है, आज ही, क्योंकि इतनी आशंका हो रही थी कि जब इस तरह से बिना आंधी बतास के वृक्ष गिर रहा है तो कोई भी विपत्ति आ सकती है यहाँ, इसलिए जितना जल्दी हो भाग जाना चाहिए। श्रीपाद हरीश्वरी जी ने लिखा है कि चाहे दुनिया में कोई भी तीर्थ हो, कितना भी पवित्र हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान कृष्ण की रक्षा करने वाला तो वृंदावन ही, भगवान को भी बचाने वाला वन है तो वृंदावन, इसलिए वृंदावन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, भगवान को बचाने के लिए वृंदावन ला रहे हैं उपनंद महाराज। और वास्तव में जब भगवान कृष्ण और बलराम जी वृंदावन को देखे तो उनके मन में उत्तमा प्रीति उत्पन्न हुई, ऐसी प्रसन्नता पहले नहीं हुई थी जैसे वृंदावन को देखकर, आगे वर्णन आएगा। उपनंद महाराज ने कहा कि तत्र, इसलिए तत्र वहां अद्वैव जास्याम, आज ही जाएंगे, सकटानिजुं तमाचिरम, आप लोग अपने अपने छकड़ों को जोतिए, अर्थात छकड़ों में बैल ना दिए, बैल को युक्त कीजिए और सारा सामान बस लादना चालू किया जाए। तो गोप वृद्ध जुटे हुए थे तो उनको आज्ञा दी गई कि अपने अपने घर जाइए और सब सामान लादिए बैलगाड़ी पर, एक एक गाड़ी नहीं, एक एक घर में कई गाड़ियां थी और उसके लिए कोई बाहर से शक्ति एनर्जी नहीं लानी पड़ती थी कि जाओ पेट्रोल खरीदो और ये डीजल खरीद लाओ तब चलेंगे, बैल थे स्वाभाविक शक्ति। अब तो मनुष्य समाज पूर्ण रूप से दूसरे के अधीन होता जा रहा है, मतलब स्वतंत्र थे, बैल गाड़ी बनी हुई है उसी बन से और बैल हैं, बस जोतना है और चल देना। माचिरम जुक्त माचिरम, अब देर मत कीजिए, जाइए सब लोग अपने अपने घर और जोतिए, गोधनानी अग्रतो जानतु, और एक कार्य किया जाए, जितनी गौएं फैली हैं इधर महावन में गौओं को एक जगह करके और गौओं को आगे भेजा जाए, क्योंकि सामान जुटाने में इकट्ठा करने में देर होगी और गौओं के भी जाने में देर होती है, क्योंकि गौएं ऐसे केवल पथ पकड़कर नहीं जाएंगे, वो बीच में खाते चढ़ते हुए जाएंगे, इसलिए उनमें देर होगी, यह नीति है, देखिए वे हमारा धन है, गो धनानी कर, गौ सबसे बड़ा धन है। तो हमारे गोधन मतलब धन शब्द कहकर उपनंद महाराज कह रहे हैं कि हमारी रक्षा है, हमें उन्हें बचाना है, उनकी रक्षा करनी है, हमारे उपजीव्य है, इसलिए गौओं को आगे किया जाए, गौओं को आगे हकवाइए। गोधनानी अग्रतो जानतु भवता में यदि रोचते। और ये सब बात कह करके अंत में कहते हैं यदि हमारा परामर्श हमारी मंत्रणा भवता में रोचते, यदि आप लोगों को रुचिकर लग रही है हमारी मंत्रणा तो कीजिए। तच्छु त्वयि कधियो गोपा साधु साध्विति वादिनः। इस बात को सुन करके एक मत वाले सब गोप बोले साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। महाबन छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वास्तव में महाबन छोड़ना उसमें मुख्य नहीं था, मुख्य था वृंदावन में आना, और यह भगवान की इच्छा थी। अब वो वृंदावन में आना चाहते थे और धीरे धीरे वो दूर दूर प्रदेश में घूमना चाहते थे, पूरे ब्रजमंडल में। महाबन में बड़ा अंकुश था, उन पर कंट्रोल था, वो नहीं घूम सकते थे और उम्र भी नहीं थी घूमने की, शरीर में बल नहीं था और बुद्धि भी विकसित नहीं थी भगवान की, भगवान का शरीर बुद्धि बल सब अभी कम था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा तो अब ब्रज की हवा पानी लेंगे, देखेंगे, घूमेंगे। तो उनकी भी इच्छा थी आने। उपनंद महाराज इस तरह से कहे तो सबने कहा, एक धिया हो करके कहा। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं एक धिया का अर्थ है एकस्मिन कृष्ण एव धीर जे शांते एक धिया। एक कृष्ण में ही जिनकी बुद्धि लगी हुई थी वे थे एक धी, एक धिया, एक कृष्ण में ही सबकी बुद्धि लगी हुई थी, इसलिए कृष्ण की रक्षा का ही सबके सामने उद्देश्य था। अतः वो स्थान छोड़ने में जाने में यात्रा के कष्ट आदि का कोई ध्यान ही नहीं रहा, बस वहां अगर कृष्ण सुखी रहेगा, कृष्ण जीता रहेगा ठीक से, बस बस सब चलो, और कोई असुविधा पर ध्यान ही नहीं गया। और किसी ने कहा, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि नंद महाराज आप तो ठीक कहते हैं बट, ऐसा किसी ने नहीं कहा ठीक है ठीक है सब एक स्वर से मान लिए, चलिए चलिए चलिए, सब अपने अपने घर गए और गाड़ी छकड़ा जोतने लगे, सामान सब लादो पांच पैसे करने। आजकल बट लेकिन बहुत चल रहा है श्रील प्रभुपाद जी इस पर जंग किए। एक बार कोई पूछ रहा था तो कई बार इफ शब्द लगाया, इफ और कौन शब्द मैं भूल रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इफ क्यों लगा रहे हो, तो कोई ज्ञान दे रहे हो बांट रहे हो, वैज्ञानिकों के लिए कहे चाहे किसी के लिए, जब कोई बात कह रहे हो तो यदि यह ऐसा है तो ये क्यों लगा रहे, जब ज्ञान है तो बोलो क्लियर यह बात सत्य है। तो आजकल तो एक कहने की परिपाटी, हाँ आप ठीक कह रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ लेकिन आ ही जाता है, कुछ न कुछ बट आ जाता है लेकिन वहां नहीं आया, सौदे कहा ठीक है ठीक है। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं कहा कि कम से कम काल विलंब किया जाए, अब आज ही न चला जाए, हमको कुछ कार्य है यहाँ, हमारा कुछ काम कर लेने दीजिए, कुछ इधर काम अटका है, कुछ ये है वो है, चाहे घर में अभी कुछ हम आज नहीं जा सकते हैं, कोई बीमार पड़ा है, कोई हॉस्पिटल में है, नहीं कुछ नहीं, बस ठीक है आज ही चलना, तैयार हो गए। क्योंकि सबकी मति केवल कृष्ण में लगी थी, एक धिया, और अभिनंदन किए उनकी बातों का, साधु साधु बहुत अच्छा आपने कहा। ब्रजान स्वान स्वान समायुज्य जयो रूढ़ परिच्छदा, वे आए अपने घर और अपने अपने ब्रज को, ब्रज का अर्थ है अपने अपने घर में जो भी सामान था केवल दीवाल भर छोड़े दीवार छपर आदि नहीं लिए, बाकी उसमें तो जाता चकरी ढेंकी, कुछ लोग नहीं समझते होंगे ढेंकी का क्या, आटा पीसने की चक्की और धान कूटने के लिए ढेकी था, दीपक, कपड़ा और बहुत से बर्तन थे, घी दूध दही भरे हुए थे, खास करके घी बड़े बड़े मटकों में रखा गया था, बहुत से पात्रों में रखा गया था, वो सब लादे संभाले, क्योंकि ब्रजवासियों के पास जो कुछ भी था, जैसा मर्थे कांचित जद धामार्थ सुहित प्रियात्मतम प्राणाशयास्तत्कृते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रजवासियों के पास जो भी है, धन, शरीर, प्राण, पैसा या स्वजन, सब कृष्ण के लिए था। जो कुछ भी सामान अपने अपने बैलगाड़ी पर लाद रहे थे, वास्तव में सब कृष्ण के लिए था। यही सोच करके लादते थे कि कृष्ण इससे सुख मानता है, ये सामान ले चलना है, ये सामान ले चलना है, ये ले चलना है, ये ले चलना है, यही सोच सोच करके सारा लाद रहे थे। तो रूढ़ परिच्छद, परिच्छद का अर्थ सामान, परफरनालिया, जितनी भी परफरनालिया थी, सामान था, सबको वे लादे और गाड़ी जोत करके चले। गोप जितने भी युवक थे वे सब पैदल चल रहे थे रक्षा करते हुए, और वृद्धान बालान स्त्रियों राजन सर्वोपकरणानि च जन अनह स्वारोप्य गोपाला जत्ता आत्सरासन। वृद्धों को, बच्चों को और स्त्रियों को बैलगाड़ी पर बैठाया गया, वे पैदल नहीं चल सकते थे। यह सीखने की बात है, नीतियां, वृद्ध, बच्चे और स्त्रियां, ये सब, और इसके साथ सर्व उपकरणानि और सारे सामान बैलगाड़ियों पर ला दे गए। सुआरोप्य, सुआरोप्य का अर्थ है खूब अच्छी तरह से ला दे गए, नहीं कि बीच में जाकर रास्ते में कोई गिर जाए सामान, खूब अच्छा से बांधा गया, रखा गया, इसको सुआरोप्य कहते हैं, खूब अच्छा से, ऐसा नहीं कोमल चीज नीचे है और ऊपर से कठोर लाद दीजिए टूट जाए, ऐसा नहीं। वो खूब प्रवीण थे इस विषय में, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी सुआरोप्य कह रहे हैं। जब वो लाद रहे होंगे, बांध रहे होंगे, ये सामान यहाँ दो, ये सामान यहाँ दो, ऐसे लाओ, ये करो करो करो, और स्त्री बैठी, बच्चे बैठ गए ना, और पिताजी बैठ गए, दादा बैठ गए, ये सब वो लोग कह रहे थे, तो सबको बैठाए। गोधनानी पुरस्कृत, और गौओं को तो आगे किया ही गया, सिंह बजा बजा करके गौओं को बुलाया गया, और चलते समय भी बिगुल बजाए गए, इसलिए कि ये आवाज सुन करके कोई भी इधर उधर नहीं रह पाएगा, कोई इधर उधर गया होगा तो आ जाएगा क्या हो रहा है, तो इसलिए आवाज की गई। तूर्य घोषेण महता यजु सह पुरोहिता, सिंह बजा बजा कर गौओं को बुला रहे थे, सबको, बिखरे थे वो तो, चरने में लगे रहते हैं तो बिखरे रहते, बछड़ों को और गौओं को एक साथ कर दिया गया। उस दिन ये नहीं नियम रखा गया कि गौएं दुही जाएंगी, ये की जाएंगी, उनको साथ चलने, बछड़े चलेंगे तो माताएं सुख से चलेंगी, नहीं तो भी चिंता में रहेंगे कि बछड़े कहाँ हैं, ये कहाँ है, तो बछड़ों को गौओं के साथ मिला दिया गया पूरा। तो ये चल रहे थे आनंद से, गौएं चल रही थी, बच्चे भी फुदकते हुए चल रहे थे, और जयु सह पुरोहिता, पुरोहितों के साथ चले। पुरोहित शब्द का अर्थ है पुरोहित, पुरोहित जो सदा सामने रहकर हित करे वो है पुरोहित। पुरोहित बहुत जरूरी है, हित करने वाला चाहिए ना, देश काल आदि का ज्ञान बतावे, ग्रहों की स्थिति बतावे, भगवान के भजन की बात बतावे, स्वस्ति वाचन करे, पुरोहित बहुत जरूरी है। तो पुरोहितों के साथ चले, ये प्रश्न होगा कि पुरोहित पैदल चल रहे थे क्या? कुछ पुरोहित ऐसे थे जिन्होंने गाड़ी पर चढ़ना स्वीकार ही नहीं किया, कहे नहीं हम चलेंगे, और भी उनकी जरूरत होती है। इसमें वृद्ध है या स्त्रियां जो ब्राह्मणों की थी, वो तो सब स्त्री तो निर्विशेष भाव से चढ़ी बैलगाड़ी पर, वृद्ध चढ़े, लेकिन जो युवक पुरोहित थे वे सब साथ में चले, अथवा इनके लिए भी अलग बैलगाड़ी लगाई गई होगी, जो भी हो वो चले। गोप्यो रूढ़ रथा नूतन कुछ कुमकुम कांत कृष्ण लीला जगु प्रीत्या निष्क कंठ सुभाष सह। गोपियों का अलग से वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गोपियां रूढ़ रथा रथ पर चढ़ी, यहाँ रथ का अर्थ है बैलगाड़ी, रथ का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि घोड़े वाले रथ, और वहां तो रथ प्रथम बार अक्रूर जी ले गए थे तो लोग देखे कि रथ कैसा होता, गांव के लोग प्रथम बार, उसके पहले वो रथ देखे ही नहीं थे। यहाँ रथ का अर्थ बैलगाड़ी, बैलगाड़ियों पर चढ़ी। लेकिन रथ इसलिए कहा जाता है, कहा गया है कि बहुत सुंदर ऊपर चंदोवा ताने गए थे, बहुत सुंदर बनाया गया था ढंग से, धूप नहीं लग रही थी, ऊपर से छाया के लिए बनाया गया था, सजाई गई थी बैलगाड़ियां बहुत सी, उस पर गोपियां चढ़ी थी। उनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनके नए नए स्तनों पर नए कुमकुम लगे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, और कृष्ण लीला जगुह प्रीत्या निष्क कंठ सुवास, गले में हसली लगाई थी, कंठाभरण, बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, और कृष्ण लीला सुमधुर स्वर से गा रही थी। अलग अलग बैल गाड़ियों पर चढ़ी हुई गोपियां कृष्ण की लीला गा रही थी, जो बचपन में लीलाएं हुई थी उसी को गा रही थी, बिना ढोलक हारमोनियम के गा रही थी। भगवान ने वास्तव में ऐसा गला दिया है स्त्रियों को कि वे बिना बाजा के भी गावे फिर भी बहुत अच्छा लगता है। सब जगह देखते ही हैं, विवाह में चाहे किसी उत्सव में स्त्रियां गाती हैं, तो जा रही हैं तो उनका गीत सिद्ध कर रहा है कि उन्हें भी बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, और आनंद से कृष्ण की बाल लीलाओं को गाती जा रही है। कृष्ण लीला जगुह, कृष्ण लीला को गा रहे थे, कैसे प्रीत्या सुख से, उनको गाने में बड़ा सुख मिल रहा था तो गाती हुई जा रही थी। और निष्क कंठ, कंठ में निष्क था, निष्क गहना को कहा था, उसको कंठाभरण हंसली कहते हैं, तो उपलक्षण है, इसका अर्थ है कि सब अंगों में गहना पहनी थी, आभूषण लगाई थी और सुंदर वस्त्र पहनी थी। रोहिणी और जशोदा एक बैलगाड़ी पर थी और उस पर केवल छाया भर की गई थी बैलगाड़ी पर, इधर उधर कवर नहीं किया गया था। तो कृष्ण बलराम को लेकर के चढ़ी एक गाड़ी पर, एक रथ पर, वो तो कृष्ण बलराम से अलग रह ही नहीं सकती थी, तो बच्चे और भी चढ़ाए गए थे और आपस में बातचीत करते थे, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग बैलगाड़ियों पर बड़े लोगों के साथ, केवल बच्चे नहीं चढ़ाए गए थे किसी गाड़ी पर, बड़े बूढ़ों के साथ ही थे। तो कृष्ण और बलराम से अलग हो ही नहीं सकती है जशोदा या रोहिणी, इसलिए अब दोनों माताओं को एक रथ पर चढ़ाया गया इन दोनों के साथ, और सभी रथों के, सभी बैलगाड़ियों के बीच में रखा गया, कृष्ण बलराम के बैलगाड़ी को, जशोदा और रोहिणी बैठी, तो बहुत सुंदर लग रही थी दोनों माताएं उस समय दोनों बच्चों के साथ। और कृष्ण बलराम इतनी बातें करते जाते थे कि उनके कथा को ही वो सुनने में व्यस्त थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, आपस में बातचीत करते थे, कभी कोई रास्ते में हरिण निकलता था तो कृष्ण कहते थे कितना निकला, और किसी साधारण जानवर को भी देख कर कहते थे बाघ है, तो बलराम जी कहते थे नहीं बाघ नहीं है, तो उनकी तोतली बोली थी, उनका अनुभव भी अभी अनकम्प्लीट था, अच्छा नहीं था, प्रॉपर नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ बोलते ही जाते, ये वृक्ष कितना सुंदर है, ये है वो है, तो तत्कथा श्रवण उत्सुक दोनों के, कृष्ण बलराम की कथा को सुनने में उत्सुक थी, बहुत उत्सुकता थी दोनों माताओं की कि ये बोले, कुछ न कुछ बोलते रहे, वही सुनते जाते, वे दोनों नहीं बोल रहे थे, ये दोनों आपस में जब बोलते थे चाहे माँ से कुछ कहते थे, खास करके रास्ते में वन को देखकर या पशुओं को देख करके एक नया नया अनुभव मिल रहा था, एक नए प्रदेश में जा रहे हैं तो बहुत खुशी है, और इनको कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं दोनों बच्चों को ये नहीं पता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बच्चे तो वैसे भी समाज चले कहीं उत्सव करे तो खुशी में रहते ही हैं, उनको ये शोक नहीं होता है कि गांव छूट रहा है या ये हो रहा है, वो तो खुशी में होते ही हैं। जो खूब कथा कर रहे थे आपस में वन प्रदेश को देख देख करके, तो उसको सुनने में बहुत आनंदित हो रही थी। और कृष्ण बलराम के साथ होने से दोनों माताएं बहुत सुंदर लग रही थी। रेजतु श्री सुखदेव गोस्वामी भी बारी बारी से घूम घूम करके सभी सकट पर देख रहे हैं कौन कहाँ है। श्री गोपी जनों को देख लिए, इसके बाद कृष्ण बलराम को, माता रोहिणी और जसोदा को सकट पर, और सब पर तो निगाह डाले हैं। मुख्य रूप से दो सकट पर, दो नहीं दो से अधिक, एक पर तो कृष्ण बलराम थे, रोहिणी जसोदा, और गोपियां तो कई सकट पर थी। कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी का चित आविष्ट है चलते समय महावन से, तो उनको भी खुशी है कि लोग वृंदावन आ रहे हैं, तो इसीलिए इसका वर्णन कर रहे हैं। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर ब्रजावासम सकटय रद्ध चंद्रवत। वृंदावनम संप्रविश्य, तो वे सब गोप गौओं के साथ सब वृंदावन में सम्यक प्रवेश किए। वृंदावन में प्रवेश करने से पहले वे जमुना जी पार किए, जो मथुरा से होकर वे नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो तो सिटी है, सिटी में गौएं कैसे चलेंगी, और सब शहर से चलने में दिक्कत होती, ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है तो वहां नहीं गए। लौह वन से रास्ता बदल दिए, ऐसे आए। आप सभी समझ सकते हैं कि किस कहां पार किए होंगे, इधर आए और इधर से आकर के फिर गिरिराज जी के निकट वे रहे जमुना जी के तट पर। वृंदावन के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्व काल सुखावह, सब समय में सुख को आवहती आवह, जो ढो ढो कर लावे दे सब सुख सब समय वृंदावन में, सर्व काल सुखावह, सब समय सुख देने वाला। सभी स्थान सब समय सुख नहीं देता है, जैसे गर्मी के दिन में लोग हिमालय भागने लगते हैं, मंसूरी देहरादून कहाँ कहाँ जाने लगते हैं। वो गर्मी में सुख देने वाला होता है हिमालय, लेकिन जाड़ा में वो सुख नहीं देता है। इसी तरह लोग बदलते रहते हैं, इधर गर्मी में वहां जाएंगे, ठंडा में वहां जाएंगे, वसंत ऋतु में वहां जाएंगे, लेकिन वृंदावन सर्व काल सुखावह, सभी समय में यहाँ सुख है। तत्र चक्रुर ब्रजावास, वहां जा करके वे अपने अपने बैलगाड़ियों को सजाए, वही घर था वास्तव, अभी घर नहीं बांधे। वृंदावन में आकर के अपने अपने छकड़ों को अर्ध चंद्राकार सजाए, आधा चंद्रमा, सबने देखा होगा अष्टमी का चंद्रमा जैसे होता है ऐसे सजाए। एक तरफ निकलने का काफी स्थान रखा गया था और चारों तरफ बैलगाड़ियां इकट्ठी की गई थी, उन्हीं पर सामान लदा था, और कभी कभी ऐसा भी था कि उनके नीचे ही वे रहते थे बैलगाड़ियों के। बहुत गरीबी में गुजारा करना था इस तरह आवास की दृष्टि से, बाकी खाने पीने पहनने के लिए तो रत्न भरे पड़े थे और दूध दही। आजकल के लोगों के पास तो एसी रूम है लेकिन दूध नदारत, शुद्ध दूध नहीं मिलता, माखन का तो कोई प्रश्न ही नहीं, और गहना नहीं है लगाने का। वे गोप आभूषणों से भरे हैं, खाने पीने के लिए तो अमृत ही है, दूध दही घी, रहने के लिए बैलगाड़ी, तो किसी तरह से जीज असली चीज तो खान पान है ना। जब खान पान अच्छा नहीं है तो सोना के घर में भी रहकर क्या होगा, देखिए वहां का वैभव ब्रज का। वैसे तो सारी भूमि चिंतामणि है, दिव्य अप्राकृत रत्न से बनी हुई है, लेकिन बाहरी दृष्टि से देखने पर भी ब्रज बहुत सुखी है। चक्रुर ब्रजावासम, यहाँ ब्रजावासम का अर्थ है ब्रज के आवास के, बैलगाड़ी को खड़ा किया और कुछ मतलब घेरा करने लगे, घेरा घेरना, पीछे से कोई प्रवेश न करने पावे, जो भी आवे आगे से प्रवेश करे उसमें रहे, घेरा कहते। पहले तो ये बंद था, बाद में भी जब यहाँ पर सद गोस्वामी गण आए और भी आचार्य लोग आए तो उस समय भी कुछ लोग आया करके वन में घेरा करते थे। तो आज भी घेरा प्रसिद्ध है, मदन मोहन घेरा, जय सिंह घेरा, ये घेरा वो घेरा घेरा उसको कहते, घेरते थे अस्थार। अब तो शहर हो गया जहां तहां, गोवर्धन में भी यहाँ भी, लेकिन उस समय केवल वन था। सकटई ही अर्ध चंद्र सकटई ब्रजावासम चक्र, सकटों से ब्रजावास किए बैलगाड़ियों से अर्ध चंद्रवत। ये बहुत बुद्धिमानी से करे अर्ध चंद्रवत। संकट तो हर एक समय आता ही रहता है, इसीलिए ये लोग ऐसा कि मैं एक बात को छोड़ दिया वहां पर चलते समय कि जितने भी युवक गोप थे वे हाथ में धनुष बाण लेकर चल रहे थे रक्षा करते हुए, क्योंकि संकट कहीं भी हो सकता है, खास करके गऊओं पर, बच्चों पर और स्त्रियों पर, तो उनकी रक्षा करते हुए वे चल रहे थे। किसी समाज को इतना दुर्बल नहीं होना चाहिए कोई भी अटैक करे और स्त्री का अपहरण कर ले, बच्चों का कर ले या धन लूट ले। पूरा समर्थ थे, हथियार लेकर के चल रहे थे। और प्रदेश में जाना है, दूसरी जगह पर जाना है, रास्ते में कोई अटैक कर सकता है या वहां कर सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनह स्वारोप्य गोपाला जत्ता आत सरासना, आत सरासना धनुष बाण लेकर चल रहे थे। लोग चल रहे थे तो अपनी रक्षा खुद कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हायर करो सिक्योरिटी वो रक्षा करेगा, अपनी रक्षा करने में वो समर्थ थे, चल रहे थे इस तरह से। उनके पास धनुष थे, बाण थे, समय पर रक्षा कर सकते थे। इसका अर्थ है कि उन्हें भय नहीं था, निर्भय थे और किसी भी शत्रु का सामना करने में समर्थ। इस तरह यह बात बहुत जरूरी है, चाहे कोई युग आज का समय हो या पहले का हो, खास करके धन, स्त्री और बच्चों पर संकट आता रहता है। बहुत से ऐसे राक्षस या दुष्ट अभिप्राय के मनुष्य होते हैं जो इन पर कुदृष्टि डालते हैं। जब भगवान वन में गए थे तो दोनों भाई में कोई चोरी नहीं गया, सीता जी चोरी चली गई। स्त्रियों पर तो खतरा रहता ही है, राक्षस दूषित आचरण वाले चाहते हैं ऐसा अटैक कर, इसलिए रक्षा के लिए प्रयास कर हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। पति को तो इसीलिए पति कहते हैं, पति इति पति, जो अपने पत्नी का पालन करे, रक्षा करे, उसको पति कहते हैं। रक्षा ही नहीं कर सकता तब क्या पता पति है, कुछ नहीं है उसका। जब पत्नी को कपड़ा नहीं दे सकता, घर बनाकर नहीं दे सकता, गहना नहीं दे सकता, उसकी रक्षा नहीं कर सकता, तो पति क्या है, है? सर भाव जी कहते वो चाय की पत्ती है। तो समर्थ होना चाहिए रक्षा करने में, उसमें पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम कमा लेंगे, पत्नी का बच्चों का पालन करेंगे और समय पर रक्षा कर लेंगे, चाहे समुद्र में पुल भी बांधना हो, सेतु बनाना हो, तब भी बना लेंगे। तो भगवान अयोध्या से गए थे तो क्या लेकर के गए, धनुष बाण केवल साथ में था और उससे उन्होंने लंका विजय किया, सीता को लौटा लिया। तो पति का क्या कर्तव्य है भगवान अपने आचरण से सिखाए। जो पत्नी अयोध्या के सुख को छोड़ दी अपने पति के लिए, नैहर के सुख का ध्यान नहीं रखी, महाराज दशरथ ने ये कहा था कि सुमन जिसे कि जाकर के बेटी सीता को लौटा लीजिए, तो पितुगृह कबहु ससुरारी, यदि उसकी इच्छा पिता के घर रहने की हो तो रह ले वहां पर जनक जी महाराज के यहाँ, और अगर ससुरारी में रहने की इच्छा करे तो यहाँ रहे, लेकिन सीता लौट जाए। पर सीता जी नहीं लौटी, वो तो पूर्ण पतिव्रता स्त्री थी। तो एक प्रकार से जनकपुर का सुख त्यागा, अयोध्या का सुख त्यागा, राम की सेवा की। तो भगवान वास्तव में इतने अबलाइज्ड हैं, इतने आभारी हुए कि उन्होंने सीता के लिए लंका को मटियामेट कर दिया पूरा। भगवान कर्तव्य दिखा रहे हैं, पति का एक कर्तव्य होना चाहिए और वास्तव में पति रक्षा कर लेगा, केवल साहस की जरूरत है, हमें रक्षा करनी है, विचार होना चाहिए, वो कर लेता है। तो यहाँ पर जो गोप चल रहे हैं अपने बच्चों की और स्त्रियों की और गौओं की रक्षा करते हैं, पूर्ण समर्थ है, अस्त्र शस्त्र के साथ चल रहे हैं। अस्त्रों की बहुत जरूरत है, शांति ही ओम शांति करने से शांति नहीं होती है। तो शांति शांति करते, कई बार हमने जग में देखा है ओम शांति ही ओम शांति, और जग खत्म होते होते जग करने वाले झगड़ा करने लगते, उन्हीं में अशांति हो जाती। ऐसा विश्व शांति के लिए यज्ञ होता है और जग मंडप भी अशांत हो जाता, ऐसा हो। हर एक युग में शक्ति की आवश्यकता होती है, शांति शक्ति से मिलती है, याचना से नहीं। याचना तो भगवान करने जा रहे थे, संधि दूत बने हुए थे, और उधर से दुर्योधन कह दिया कि बिना युद्ध के सुई की नोक भर जमीन नहीं देंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है अब शांति होगी, और 18 दिन में सारी भूमि छोड़कर चला गया दुर्योधन। युद्ध हुआ, युद्ध तो हो गए, युद्ध एक आवश्यक बुराई है, ये होगा ही। जो लोग ऐसी बात कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति शांति, वो वास्तव में कायर होते हैं, वो शांति स्थापित नहीं कर सकते। शांति स्थापित किया था गुरु गोविंद सिंह ने, शिवाजी ने, ये लोग शांति स्थापित किए थे वास्तव में, लेकिन हाथ जोड़ने वाले लोग तो केवल अशांति देकर चले गए, ये देखा गया। तो इसलिए यहाँ जो आत्मसरासना है, धनुष बाण ले करके चल रहे थे गोप, ये बहुत जरूरी थे। और आ करके यहाँ भी जो ब्रजावास की वो नीति के अनुसार कि किसी संकट में किसी शत्रु पर कैसे समवेत आक्रमण हम लोग कर सकते हैं, बच सकते हैं, तो सभी गोपों के आवास का मुख एक तरफ था, सभी जान सकते थे कि कोई संकट आ रहा है तो ऐसे आएगा, हम प्रतिकार करेंगे तो सब सम्मिलित शक्ति से करेंगे, इसलिए उस वन में नए देश में इस तरह से वो वास किए। वास के तो श्री कृष्ण को एक अवसर मिला घूमने का, देखने का, तो केवल उसी दिन की बात नहीं, आगे चल करके जब ये देखेंगे वृंदावन जमुना पुलिन और गोवर्धन, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ा उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधव योर नृप। हे महाराज परीक्षित, वृंदावन गोवर्धन और जमुना जी के तटों को देखकर राम और माधव के हृदय में उत्तमा प्रीति हुई। प्रीति का अर्थ प्रसन्नता सुख, और उत्तमा का अर्थ सर्वश्रेष्ठ। अब तक राम और माधव को वह सुख नहीं मिला था जो वृंदावन गोवर्धन और जमुना जी के पुलिन को देखकर हुआ। भगवान पहले से बहुत अधिक सुखी हुए राम माधव और नृप। कृष्ण के लिए माधव शब्द दिया गया, माधव का अर्थ बसंत ऋतु भी होता है, तो श्लेष से अर्थ है कि बसंत भी आकर इस वन में खुश हो गया, श्लेष अर्थ। या लक्ष्मीपति माधव, मां माने लक्ष्मी और धव का अर्थ पति, लक्ष्मी के पति श्रीपति भी आकर के इस वन में सुख का अनुभव किए, और इसका अर्थ है कि वैकुंठ में भी लक्ष्मी जी के साथ रह करके भी भगवान को वह सुख नहीं मिला था जो वृंदावन गोवर्धन और जमुना जी को देखकर सुख मिला। यहाँ अर्थ झलक रहा है, वैकुंठ में वह सुख नहीं है। जो सुख बरस रहे हो ब्रजमाही, सो सुख वैकुंठ हो मैना, जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो सुख तीन लोक में ना। तो आनंद घन लक्ष्मीपति भगवान को भी जमुना का पुलिन सुख देने लगा, ऐसा सुख पहले नहीं प्राप्त किए थे, इसीलिए उत्तमा प्रीति कह रहे। द्वादश कानन, जमुना जी का पुलिन और गिरिराज जी तथा वृंदावन, यद्यपि सब वृंदावन के अंदर है, जमुना जी का पुलिन या गोवर्धन जी सब वृंदावन के अंदर है, लेकिन फिर भी दृश्य अलग अलग हैं और अलग अलग दृश्य को देख करके भगवान को कुछ प्रीति भेद हो रहा है, कुछ वहाँ गिरिराज में कुछ अलग प्रकार की प्रसन्नता है, जमुना जी के तट पर अलग प्रकार की प्रसन्नता है और वृंदावन में अलग। जमुना जी में क्या अलग है? जल विहार की इच्छा हो रही है या हुई आगे चल करके जल विहार किए हैं, मतलब जल केली किए हैं, घूमे हैं तट पर और सब पानी पिए खेले, अब गिरिराज जी की गुफाओं में आंख मिचौनी खेले, झूला झूले, भोजन किए, घूमे, वहाँ कुछ दूसरे तरह का सुख है। वृंदावन में सपाट भूमि में स्वच्छंद विचरण, झूला झूलना, गोचारण करना, खेलना, नाना प्रकार, धन्य है यह वृंदावन जो भगवान को भी सुख दे रहा है। वास्तव में यह वृंदावन चित शक्ति का विलास है, स्वरूप शक्ति ही परिणत हुई है, ये माया शक्ति का परिणाम वृंदावन नहीं है। जैसे और सब संसार है वैसे ये नहीं, यह कि भूमि चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है, तो इस कारण से कृष्ण और बलराम को इसे देख करके बहुत प्रसन्नता है। वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनामि च, और चकार से अनुक्त समुच्चय, च शब्द से है, चाहे कान्य वन या और भी जितने वन हैं, सारा 84 कोष ब्रजमंडल देख करके कृष्ण को अतिशय प्रसन्नता बलराम जी को। इस प्रकार ब्रजवासियों को सुख देते हुए भगवान बाल चेष्टा कर रहे थे, खास करके किन किन लीलाओं से सुख देते थे, एक है बाल चेष्टित, बच्चे जैसी चेष्टा बिल्कुल करना, और उसमें भी सबसे बड़ा सुख देने वाला क्या उपाय था, कल वाक्य मधुर और अस्फुट, क्लियर वचन नहीं बोल पाते थे, तोतली बोली में जो बोलते थे उससे बहुत आनंद प्राप्त होता था, और आगे चल करके तो तोतली बोली समाप्त हो गई, अब पूरा पूरा बोलने लगे, परंतु इतना सुंदर कंठ था भगवान का कि इससे उनके स्वर को सुन करके और उनके संबोधन को, गान को सुन करके बहुत सुखी होते, और कृष्ण कभी भी कुछ बोलते थे तो ऐसा लगता है कि गाते हुए बोल रहे, कोई भी वाक्य गाते हुए बोलते थे, किसी भी राग में गा सकते थे कोई भी बात। और इधर तो संसार में कोई बहुत बड़ा कवि होता है तब जाकर के राग में बोलता है गाता है, तो भूत प्रेत में एक बेताल होता है, बेताल का मतलब बिना ताल के जो गावे बोले बेताल आए जो कुछ भी हो, इस तरह भगवान सभी प्रकार के पक्षी की बोली बोल सकते थे, ऐसा आगे बढ़ रहे कि सूगे लज्जित हो जाते थे उनकी बोली सुनकर, इतना सुंदर मीठा बोलते थे, और जब संबोधन परक वचन बोलते थे तब तो रस का संचार कर देता था, जैसे नंद महाराज को बाबा कहना, माँ जसोदा को माँ कहना, मैया कहना, और भी उपनंद महाराज को बाबा कहना और सब, ऐसे सब बहुत सुखी होते। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्ष्य सेदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, नृप, हे महाराज परीक्षित, वृंदावन गोवर्धन और जमुना के तटों को देखकर राम और माधव के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई, अति प्रसन्नता हुई, उन्हें सुख मिला। इस प्रकार ब्रजवासियों को प्रीति देते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बाल लीलाओं द्वारा विहार करते थे। एवं ब्रजौ कसाम प्रीतिम जच्छन्तौ बाल चेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। इस प्रकार ब्रजौ कसाम ब्रज जिनका निवास है उन ब्रजवासियों को गोपों को गौओं को और सबको बाल चेष्टितैः और कलवाक्यैः प्रीतिम जच्छन्त प्रीति दे रहे थे सुख दे रहे थे। इस प्रीति और सुख का अर्थ वह नहीं समझना चाहिए जो हम लोग लोक में सुख पाते हैं। संसार में वास्तव में सुख नहीं है, केवल मन का अनुकूल्य होने से हम मान लेते हैं कि यह सुख है। लेकिन कृष्ण और बलराम अपनी बाल लीलाओं द्वारा तथा अपने मधुर वचनों द्वारा जो सुख दे रहे थे ब्रजवासियों को वह वास्तव में चिन्मय सुख था, स्वरूपानंद, वह आत्मा का सुख था। और वास्तविकता यह है कि कोई भी ब्रजवासी, यहाँ तक कि वृक्ष पशु पक्षी तक, ये सब जड़ शरीर वाले नहीं है, माया के द्वारा उत्पन्न किए हुए शरीर वाले नहीं, सब चिन्मय है। सब कुछ भूमि चिन्मय है, वृक्ष चिन्मय है। तो भगवान से साक्षात जो आनंद मिलता है आत्मा को, वह आनंद मिल रहा था। और वो भी उत्तमा प्रीति कृष्ण बलराम को भी हो रही थी। कृष्ण बलराम को भी वृंदावन जमुना पुलिन गोवर्धन को देख करके उत्तम प्रीति हुई। ऐसा सुख वे कभी नहीं पाए थे, ऐसे आनंद का अनुभव कभी नहीं किए। और इस प्रसन्नता में वे दोनों विविध बाल लीलाओं द्वारा ब्रजवासियों को सुख दे रहे थे। जच्छन्तौ का अर्थ दे रहे थे, दान के अर्थ में भगवान ने विविध चेष्टा द्वारा प्रदान कर रहे थे आनंद। ब्रजोकसम प्रीतिम जच्छन्तौ, तो दो बात कह रहे हैं, एक बाल चेष्टितई और कल वाक्य। कल का अर्थ होता है मधुर, जैसे कल रहो मधुर रहो, कल वाक्य और बाल चेष्टितई। स्वकालेन वत्सपालो बहुवतु, अपने काल के अनुसार वे अब वत्सपाल हो गए। वत्सपाल अभी गोपाल नहीं हुए, गोवत्सपाल हुए, छोटे छोटे बच्चे थे कृष्ण बलराम, इसलिए उनको गायों के छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी दूर पर घुमाने की अनुमति मिल गई। बच्चे भी खूंटे में बंधे हुए नहीं रहेंगे ना, उनको भी चराना पड़ता है। गौएं तो दूर दूर जाती है चरने के लिए, लेकिन गौओं के बच्चे थोड़ी दूर पर घूम लेते हैं, चर लेते हैं। उनको बहुत चरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शाम होने पर तो आधा पेट दूध से भर जाता है गाय के, वो पी लेते हैं, या कभी कभी पेट भर भी पी लेते हैं। पर कुछ घास की आवश्यकता उनको होती है, पर अब के लोग तो गाय के बच्चों को एक बिंदु भी नहीं देते, कसाई हो गए सब, दूकर पी जाते हैं चाहे बेच देते हैं, बच्चों को दूध नहीं देते। परंतु भगवान के समय में बछड़े पर्याप्त दूध पीते थे, परंतु फिर भी केवल दूध से अच्छा है कि घास भी खाएं और दूध भी पिए तो शरीर अच्छा रहता है। तो कृष्ण बलराम को अनुमति मिल गई बच्चों के पालन की। वत्स पालो बभूवतु, इस पर श्रील प्रभुपाद टीका लिखते हुए कहते हैं कि कृष्ण बलराम इतने बड़े कुल में लगभग एक राजा के यहाँ जन्म लिए थे, परंतु फिर भी उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया। प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल स्कूल में लड़कों को भेज कर और एक ही सब्जेक्ट पढ़ा करके और बेरोजगारों की संख्या लोग बढ़ा रहे हैं। इसलिए बेटर है कि शुरू से ही भिन्न भिन्न विषय पढ़ाया जाए बच्चों को, जिस विषय में वे प्रवीण हो सकते हैं। जैसे ब्राह्मणों को वेद शास्त्र के अनुसार पढ़ाया जाता था, विविध तत्वों के निरूपण की बात, भगवत तत्व या और भी आयुर्वेद की शिक्षा या ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा उन्हें दी जाती थी, और क्षत्रियों को धनुर्वेद सिखाया जाता था। वे पढ़ते थे तो ये विचार कर लिया जाता था कि क्षत्रिय लड़का है तो उसको मिलिट्री आर्ट, युद्ध विद्या सिखाई जाती थी, और वैश्यों को कॉमर्स सिखाया जाता था, व्यापार करना और खेती करना और गाय की रक्षा करना, और शूद्रों को ड्राइवरी करना, और भी जितनी सेवाएं इस समय देखने में आती हैं सब उनके जिम्मे। कई प्रकार की सेवा जैसे घर बनाना, ड्राइविंग करना और भी बहुत 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 काम, तो उनको शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वयस्य हैं श्री कृष्ण, इसलिए इनको प्रारंभ में गोचारण की ही शिक्षा दी जा रही है, स्कूल में नहीं फील्ड में प्रैक्टिकल कराया जा रहा था। तो छोटे छोटे बच्चे भाई 2.5 साल के थे, श्रीपद जी गोस्वामी जी ने लिखा है उस समय वो 2.5 साल के थे, तो लिखे हैं 2 वर्ष से तो 4 ही महीने कह रहे हैं। तो अभी मैं टीका में पढ़ा 2 वर्ष टीका, चाहे प्रिंट गलत हुआ होगा जो भी हो 3.5 वर्ष भी कौन ज्यादा है। तो 3.5 वर्ष के हुए तो उनको वत्सपाल बभूवतु, वत्सपाल हो गए, एक डिग्री मिली उनको। मतलब है यह है कि उनके शरीर का बल बुद्धि कुछ विकसित हुआ, बछड़ों को पाल सकते थे। कहाँ पालते थे? अविदुरे ब्रजभुआ, ब्रजभूमि के बिल्कुल निकट। यहाँ ब्रज से तात्पर्य जहाँ बैलगाड़ी से गांव बसाया गया था, बड़ा ब्रज कहते हैं, गांव को ब्रज कहते थे और वन को वन कहते थे। तो अपने गांव से थोड़ी ही दूर पर अविदुरे ब्रज भुआ सह गोपाल दार कही, और अन्य भी गोपों के बच्चों के साथ गांव के अति निकट चारया मा सतुर वत्सान, बछड़ों को चारया मा सतुर चराते थे, घुमाते थे, तो नाना क्रीड़ा परिच्छद, और दोनों के पास अनेक प्रकार के खेलने के सामान रहते थे। बछड़ा चलाते थे लेकिन ज्यादातर वो खेलते रहते थे। वास्तव में खेलना ही मुख्य था कृष्ण बलराम का, और वत्स पालन तो एक उपकरण मात्र था, उसमें खेलने का अवसर मिलता था, खेलते रहते थे। चराने जाते थे बछड़ा लेकिन नाना क्रीड़ा परिच्छद, परिच्छद का अर्थ है सामान, जैसे बांसुरी लेकर जाते थे, श्रृंग सिंह लेकर जाते थे, और इसके साथ साथ कुछ और भी सामान और कंदुक गेंद लेकर जाते थे, कभी भी खेलने लगेंगे। तो बहुत फिक्र नहीं रहती थी बछड़ा चराने में, तो नाना क्रीड़ा परिच्छद अनेक प्रकार के खेल के सामान लिए रहते थे। किस प्रकार वे खेलते रहते थे, क्रीड़ा करते रहते थे, इसका वर्णन श्रील सुखदेव कर रहे हैं। क्वचित बादयतो वेणु क्षेपण है क्षिपतः क्वचित, कभी कभी बांसुरी बजाने लगते थे, दोनों भाइयों के एक साथ बांसुरी वादन का वर्णन किया जा रहा है, बारी बारी से नहीं, परंतु अपने आप समझ लेना चाहिए कि कोई आवश्यक नहीं था कि दोनों एक साथ ही बजाएं। कभी कभी कई गोप एक साथ बजाते थे और प्रतियोगिता होती थी उनमें कि कौन अच्छा बजा सकता है। तो श्री कृष्ण के विशेष बांसुरी वादन का वर्णन अभी नहीं किया जा रहा है, अभी वो अच्छा से सीख नहीं पाए। मुरलीधर हैं लेकिन वो बजाना आगे सीखेंगे, अभी उतनी कला नहीं जानते। यदि वो विशेष रूप से बजाते तो सुखदेव गोस्वामी अलग से उनका वर्णन करते, अभी अलग से वर्णन नहीं कर रहे। अभी फूकना सीखते होंगे बांसुरी, अभी कोई अंगुली चलाना नहीं जान पाए जो भी हो पहले तो बांसुरी पकड़ना सीखे। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रारंभ में श्री कृष्ण कोई अन्य बच्चों से विलक्षण बांसुरी वादन नहीं कर पाते थे, इसीलिए उनका कोई विशेष वर्णन नहीं। कोई बच्चा रहता है तो बच्चा रहने पर तो बुद्धि विकसित नहीं होती है। पहले तो बचपन में कृष्ण ये भी नहीं जानते होंगे कि बांसुरी बजाया जाता है। बच्चों को कोई चीज दीजिए, कोई खिलौना भी, तो खाने लगते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि चबाने की चीज नहीं है, ये दूसरा चीज है। जो भी होता है मुंह में डालना चाहिए। तो धीरे धीरे सीखे होंगे। तो क्वचित बाद या तो वेणु छेपड़े छिपता क्वच, कभी बांसुरी बजाते थे और कभी छेपड़ से छेप करते थे। छेपड़ का अर्थ है किसी यंत्र में कोई ढेला लेकर के और फेंकते थे। गुरदेल कहते या कोई चीज किसी रस्सी में बांध करके और ढेला में मोशन बना करके फेंकते थे, नदी के पार कंपटीशन लेते थे। या जल के ऊपर बिल्कुल चौड़ा खपड़ा या पत्थर ऐसे फेंकते थे, जल के ऊपर हो जाता और उसमें भी प्रतियोगिता होती थी कि हमारा हमारा कपड़ा चला गया इतना दूर। उसमें बहुत प्रसन्नता होती है बच्चों को, उसको छेपड़ कहते हैं। अथवा किसी वृक्ष पर से फल तोड़ने के लिए ढेला मारते हैं, इसको छेपड़ कहते हैं। क्वचित पादय किंकड़ी भी क्वचित कृत्रिम गो वृषय, और कभी कभी पादय चरण में बंधे हुए नूपुर बजाने में प्रतियोगिता होती थी। कृष्ण बलराम दोनों भाई नूपुर बजाते थे नाचते हुए और कहते थे मैं अच्छा बजा रहा हूँ, मैं अच्छा बजा रहा हूँ, और सब छोटे छोटे बच्चों के साथ। और किंकड़ी, किंकड़ी कहते हैं कमर में रहने वाली करधनी, बहुवचन में इसका प्रयोग है। और पादय नूपुर का भी, क्योंकि नूपुर में भी कई घंटियां होती हैं, किंकड़ी भी में ही बहुत सी घंटियां होती हैं, तो उसको बजाते नाचने में। क्वचित कृत्रिम गोवृषय, और कभी कभी वे बनावटी सांड़ बनकर लड़ते थे, बैल बनकर लड़ते थे। कृत्रिम गोवृषय, कृत्रिम गोवृषय का अर्थ है कोई काला साड़ है तो काला कंबल ओढ़ करके दहाड़ते थे, हकड़ते थे, बोलते थे बैल की तरह, जैसे जाते थे लड़ते थे, तो कृत्रिम कहते। या कोई लकड़ी बांध लेते थे सिंह जैसे, इस तरह कृत्रिम गोवृषय। गोवृषय मतलब बैल को कहते। यह कैसे खेलते थे तो कहते हैं वृषाय माणव नर दंत जुझाते परस्परम, बैल बन करके और खूब बैल की तरह हकड़ते थे, बोलते थे, फुफकारते थे और जुझाते परस्परम, दोनों भाई इस तरह युद्ध करते थे, लड़ते थे, सीखते थे। यही बच्चे तो आगे चलकर कुशल योद्धा बनेंगे वास्तव में। सब सीख रहा है। एक दिन भगवान सात बैल को बकरी के बच्चे की तरह पकड़ लिए, विवाह होने वाला था अयोध्या में। महाराज कौशल ने नग्नजीत ने रखा था कंपटीशन की उनकी पुत्री नग्नजीत जिसका नाम सत्या था, वह व्यक्ति पाणी ग्रहण करेगा जो सात बैलों को नाथ देगा। और वे बैल ऐसे थे कि एक एक बैल हजारों हजारों वीर के हाथ तोड़ दिए थे तो पैर तोड़ दिए थे, एक को भी पकड़ना कठिन था। कितने स्वाभिमानी वीर लोग गए पकड़ने के लिए, लेकिन उधर से अंग भंग हो गया, लौट आए सरस। भगवान गए थे वहां, तो भगवान को भी यही कहा गया। महाराज नग्न जीत ने कहा कि आप सर्वेश्वर हैं, लक्ष्मीपति हैं, सब तरह से मेरी पुत्री के लिए आप योग्य वर हैं, फिर भी मैंने यह शर्त रखा है तो आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो भगवान के लिए वर्णन है कि वे कमर कसे, कटी में अपना पीताम्बर कसे और इसके बाद गए और ऐसे पकड़ लिए सातों बैल को एक साथ जैसे कोई बकरी के बच्चों को पकड़ ले और उनमें नाथ चढ़ा दे, उनके नाकों में नाथ चढ़ा दे। फिर भगवान का विवाह हुआ। तो यह कला भगवान शुरू से ही सीखे थे। वैसे तो समस्त कलाओं से नित्य पूर्ण है, लेकिन लौकिक दृष्टि से विचार किया जाए तो श्री कृष्ण इसका ट्रेनिंग खूब अच्छी तरह से लिए शुरू से। अनुकृत रुत अर्जुन तुम चेरतु प्राकृत यथा। और वन में जब दोनों भाई घूमते थे निकट ही, तो जितने भी प्रकार के पशु या पक्षी या कीट पतंग होते थे उनकी बोली को सीख लिए। ऐसी बोली बोलते थे कि कभी कभी बिल्कुल भ्रम हो जाता था कि पक्षी बोल रहा है, जैसे कोयल के कुहू कुहू बोली का अनुकरण करते थे तो कोयल भी कभी कभी लजा जाते थे कि ये तो हमसे ज्यादा अच्छा बोल रहा है। दोनों भाई इस तरह बोलते थे कि किसी भी पक्षी की आवाज का अनुकरण वो कर सकते थे और पशुओं का भी, यही कार्य था। अनुकृत रुतर जंतु चेरते प्राकृत यथा, जैसे दो प्राकृत बच्चे, सामान्य मनुष्य जाति के दो बच्चे जहां तहां लीला करते चले, अनुकरण करते चले, ऐसे दोनों करते थे। अब सुनिए एक विशेष घटना होने जा रही। कदाचित जमुना तीरे वत्संचारयतो स्वकैः वयस्य हि कृष्ण बलयोर् जिघांसुर दैत्य आगमत। किसी समय जमुना के तीर पर दोनों भाई अपने वयस्य अपने समान आयु के स्वकई अपने प्राण प्रिय सखाओं के साथ वत्स चारण कर रहे थे दोनों भाई। तो उन दोनों को मारने के लिए एक राक्षस आया, एक असुर आया वहां। कंस हमेशा लगाए रखता था जाओ मारो कृष्ण बलराम को, तो बहुत से असुर आते थे और जो भी ब्रज में आए वे भेष बदल बदल कर आते थे, प्रच्छन्न रूप में आते थे। तो इस तरह भगवान अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे स्वकई, स्वकई का अर्थ है अपने जनों के साथ। वे छोटे छोटे बच्चे जो भगवान के सखा थे वे कृष्ण के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, इसलिए स्वक शब्द का प्रयोग किया गया स्वकई वयस से। वे कितने सौभाग्यशाली बच्चे होंगे जिनको मित्र के रूप में भगवान मिले। सभी मनुष्यों को बचपन में साथी मिलते हैं, लेकिन उन बच्चों का भाग्य देखिए जिनको भगवान मिले हैं और भगवान भी उनको अपना मानते हैं, उनके साथ खेलने में ही उनकी रुचि है, उनके बिना भगवान रह नहीं पाते। इसलिए स्वकई वयस्यै वे खेल रहे थे, बस चारण कर रहे थे। विशेष करके उस समय जब जमुना के तट पर वे थे तो बछड़ों को चरा रहे थे, खेल नहीं रहे थे उस समय। कभी कभी खेल रोक करके स्पेशल चराया करते थे, भाई समय हो गया है अब गोदोहन का ले चलना है इनको। तो वत्संग चार या तो क्रीड़ तो नहीं लिखा गया है यहाँ, बछड़ों को चरा रहे थे। तब तक श्री कृष्ण ने देखा एक स्पेशल बछड़ा वत्स के झुंड में मिल गया था, कंस का भेजा हुआ एक असुर, लेकिन वत्स का रूप धारण करके उसमें प्रवेश कर गया था। तम वत्स रूपिणं वीक्ष्य वत्स जूथ गतं हरिः दर्शयन् बलदेवाय सनैर्मुग्धैव अशदत्। हरिः असुरों का प्राण हरने वाले श्री कृष्ण, ये परम मनोहर श्री कृष्ण, उस वत्स रूपिणं वत्स जूथ गतं असुर को देखकर श्री बलराम जी से धीरे से बताए कि बछड़ा पहचानते हैं कौन है भगवान, छोटे से बच्चे हैं और बताए कि ये देखिए एक नया बछड़ा है। सब जानते हैं लेकिन मुग्ध की तरह पूछ रहे हैं, दिखाए दर्शन बलदेव आय, किसको दिखा रहे हैं? बल देव को दिखा रहे हैं कि हम वहां राम की जरूरत नहीं, वहां बल की जरूरत है मारने के लिए उसका, इसीलिए बल देव को दिखाए। हरिश्वर जी कहते हैं कि बल अपने संभाल कर रखिए, एक असुर आया है बछड़े के रूप में, तो बलदेव को दिखाए। और ऐसे मुग्ध की तरह, अज्ञ की तरह कि मैं जानता हूं कि केवल बछड़ा ही है, और उसके पास चले गए निर्भय आशगत, उसके पास चले गए बछड़े के पास। और बछड़ा समझ रहा था कि अज्ञ बालक है, मेरे पास आया है, और उसको मारने के फेर में था, कृष्ण को मारने के फेर में था, परंतु उसके आघात करने के पहले ही श्री कृष्ण उसके दोनों पैर को और पूंछ को एक साथ पकड़ ली और उठा करके लगे घुमाने, इतना वेग से और कई बार घुमाया कि ब्राह्मणस त्यक्त जीवित, वो घुमाने से ही मर गया ऊपर असुर। इतना जोर से भगवान ने घुमाया कि उसके प्राण निकल गए। क्या कोई भगवान से कपट करेगा? दुनिया में सबके पास कपट चलता है, भगवान के पास कपट नहीं चल सकता। गृहित्वा पर पादाभ्याम, गृहित्वा अपर पादाभ्याम, अपर मतलब पीछे का, पीछे के दोनों पैर को सहलांगुलम, पूंछ के साथ। भगवान ने सोचा कि यदि केवल दो पैर पकड़ूंगा तो पूंछ से मारेगा मेरे मुख पर इधर उधर, इसलिए पूंछ और पैर दोनों को पकड़ लिए, दोनों हाथ से भगवान पकड़े, पकड़ करके और घुमाने लगे ठाकुर, छोटा सा बच्चा उसको घुमाने लगा। और जब ही वो मरने की स्थिति में आया, उसी समय पर्वत की तरह भारी हो गया, और फिर भी भगवान घुमा रहे, स्वरूप में आ गया। और भगवान अच्युत है, कृष्ण है, जब घुमा रहे थे उस असुर को बछड़े के रूप में ही उस समय भी था, तो एक पग भी भगवान हटे नहीं इधर उधर, अचल रहे, इसलिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया। च्युत नहीं, जैसे थे वैसे घुमाने लगे, और बच्चे तो सब तमाशा देखने लगे। 3.5 वर्ष का बच्चा इस तरह से कमाल कर रहा है तो घुमाने लगे। तो भ्रामयित्वा कपित थागरे प्राहिणोद गत जीवित, तो भ्रमण कराने से ही वो मर गया था। इसके बाद भगवान ने कपित के वृक्ष पर उसको बड़े जोर से फेंका, तो उसका विशाल शरीर हो गया था, इसलिए कपित उसके आघात से गिरा, और उस कपित के आघात से और भी कई कपित गिरे वृक्ष। तो स कपित महाकाय पात के माने पपात, वो महाकाय हो गया था, अपने देश को छिपा नहीं पाया, जब भगवान ने मारा तो अपने स्वरूप में आ गया महाकाय, उसका शरीर बहुत बड़ा था। तम वृक्ष विस्मिता बाला ससंसु साधु साध्वी, अब ये देख करके कि वो असुर था और कृष्ण ने मार दिया, तो सब बच्चे बड़े विस्मित हुए और लगे कहने बहुत अच्छा साधु साधु साधु। बच्चे छोटे छोटे सब विस्मित पहले हुए, और इसके बाद कृष्ण को बधाई देने लगे। देवाश्च, इधर बच्चे प्रशंसा कर रहे थे कृष्ण की, और उधर ऊपर से देवता पुष्प बरसाने लगे। देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवु पुष्प वर्षिणः, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, स्तुति करने लगे, ये अर्थ है। और इधर बच्चे सब बड़े प्रसन्न थे। इस तरह ये वृंदावन में प्रथम बार असुर मारने की लीला है। जब वृंदावन में ब्रज में भगवान किसी भी असुर को किसी अस्त्र से नहीं मारे हैं, किसी को लात से, किसी को हाथ से, किसी को ओठ से, किसी के पेट मुख में ही हाथ डाल दिए, किसी से लड़ करके ऐसे जैसे तैसे मार, ज्यादातर हाथ से पैर से मार, हाथ में कुछ भी नहीं लिए थे। 3.5 वर्ष का बच्चा और इतने बड़े असुर को ऊपर घुमा करके और मार, फिर भी मूर्ख लोग श्री कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार कर। अब उनके पास कौन सी बुद्धि फिट किया जाए, दुष्टों को क्या बात बताई जाए। नमाम दुष्कृतिनो मुद्धा प्रपद्यन्ते नराधम। भगवान गीता में कहते हैं जो अतिशय नीच लोग हैं, दूषित हैं, भ्रष्ट बुद्धि वाले, वे मेरी शरण नहीं लेते। शरण तो लेते हैं लेकिन औरों की, जिसकी शरण नहीं लेनी चाहिए। आदमी की शरण लेते हैं, आदमी का चमचा बन करके उसकी खुशामद करते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। इस तरह के बहुत लोग दुनिया में जो भगवान को नहीं स्वीकार करते। तौ वत्स पालक भूत्वा सर्वलोकैक पालक सप्रातरासौ गोवत्सांश्चारयन्तो विचेरतुः। वे दोनों अर्थात कृष्ण बलराम क्या हैं? सर्वलोकैक पालक, समस्त जीवों के, समस्त लोकों के एकमात्र पालक हैं। लेकिन आज भक्तों के प्रेम के वश में वत्सपाल हो गए। समस्त लोकों का एकमात्र पालन करने वाले दोनों भाई आज वत्सपाल हो गए हैं, अथवा दोनों भाई वत्सपाल होकर के सब लोकों का पालन करने वाले बने। असुरों का वध कर रहे हैं तो देवताओं का पालन करेंगे, देवता लोग जगत का पालन करते हैं। वत्सपाल होते हुए भी सब लोगों का पालन कर रहे हैं, ये अर्थ है। एक अर्थ वत्सपाल कर रहे हैं लेकिन इसी में असुर का वध कर दिया, तो इसे देवताओं का काम किए और देवता जगत का पालन करते हैं, तो इस प्रकार भगवान सब लोगों का पालन कर रहे हैं वत्सपाल होते हुए। और उस समय भगवान का यह नियम था, कृष्ण बलराम का नियम था कि वे लोग सवेरे खा लेते थे घर पर और लगभग 10 बजे बछड़ा ले जाते हैं। या 6-7 बजे खा करके 7:30 बजे 8 बजे हटते होंगे, ऐसा कहने का आशा। वो तो जगते भी 6 बजे होंगे, बहुत भोर में वो बच्चे नहीं जगते थे। एक ही दिन वो बिल्कुल सवेरे चले गए थे, भोजन नहीं किए थे, जिस दिन अघासुर का वध हुआ था। 12वें अध्याय के शुरू में ही बात सुखदेव गोस्वामी जी कहे हैं, क्वचित बनासाय मनो दधत ब्रज, क्वचित बनासाय मनो दधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपात। एक दिन भगवान सिंह बजा बजा करके सभी बच्चों को जगाए और बिल्कुल सवेरे बछड़ों को लेकर चल दिए। उस दिन ब्रह्मा जी को मोह में डालना था। लेकिन और दिन सप्रात रासव, प्रातः भोजन करके जाते थे, बछड़े चराते रहते थे, इस प्रकार विचरण करते थे। अथवा यह हो सकता है कि जिस दिन बत्सासुर को मारे थे उस दिन भी सवेरे प्रसाद लेकर के गए थे और उसको मारने के बाद तब खाए, ये अर्थ हो सकता है। अब एक और लीला कह रहे हैं, स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशय अभ्यासम पायित्वा पपुर जलम। एकदा एक दिन सब गोप बच्चे अपना अपना वत्स कुल, अपना अपना बछड़ों का समुदाय लेकर गए जमुना जी के किनारे, यानी जलाशय में, यहाँ जमुना नहीं लिखा गया, किसी सरोवर में गए पानी पिलाने के लिए। ये नंद गांव के पूरब है कोई स्थान जहां भगवान ने बकासुर का वध किया। तो गए पायष्यंत, पायष्यंत का अर्थ के बछड़े प्यासे हो गए, उनको प्यास लग गई, तो अपने अपने बछड़ों को लेकर के बच्चे गए पानी पिलाने के लिए। जलाशय के निकट जा करके पहले बछड़ों को पानी पिलाए पाय इत्वा पाय इत्वा पिलाए बछड़ों को पानी पिला लिए तब पपुह जलम तब स्वयं जल पिए। कितने सुशील और कितने सुशिक्षित बच्चे हैं, वे जानते हैं कि हम बछड़ों के सेवक हैं, तो पहले बछड़ों को पानी पिला लिए तब पानी पिए। इसका अर्थ है कि बच्चों को भी प्यास थी, तो पहले बछड़ों को पानी पिला लिए तब पानी पिए। पशुओं को भी समय पर पानी पिलाना चाहिए। अब के लोगों को तो कोई ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि उनको भी समय पर पानी पिलाना चाहिए, समय पर खिलाना चाहिए। ये कितना आदर्श है, इसको वत्सपाल कहते हैं। तो सवेरे उठते उठते बस चाय चलने लगता है, ये पियो वो पियो, लेकिन घर में बंधी हुई गाय को लगता है कि भूख प्यास को जीत चुकी है, उसको कोई जरूरत नहीं। अपने सब वास्तव में पेटू लोग हो गए हैं, बस पियो खाओ, अपने चूल्हा चढ़ जाता है, बनने लगता है, ये चाय बन रहा है, वो बन रहा है, वो बन रहा है। और बहुत मुश्किल से कभी याद आती है कि घर में बछड़ा भी है और गाय भी है, उसको भी भोजन चाहिए। देखिए गोपों के बच्चे हैं, 3.5-3 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन बछड़ों को पहले पानी पिला लिए तब पानी पिए, ये धर्म है। सीखना चाहिए गौओं के पालन की इस कला को, इस नियम को। अब के तो लोग स्वयं खा लेते हैं और खा करके जूठा गाय को डाल दिए तो वही बहुत मानते हैं कि हमने बहुत गोभक्त है, उसको अपना जूठा पानी और जूठा दे दिए बस यही काफी होंगे। खैर वो लोग भी पुण्यात्मा है, कम से कम गाय रखे हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे बुद्धू हैं केवल कुत्ता रखे हैं, गाय रखे ही नहीं घर, और कुत्ता के ही पालन पोषण में उनकी जिंदगी जा रही। सवेरे सवेरे लेकर के वॉकिंग के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते, कुत्ता की सेवा में लगे रहते हैं। कुत्ता टट्टी करता है तो वहां देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, मालिक को टट्टी करा रहे, लेकर के घूमते हैं। गाय नहीं रख सकते, कुत्ता रखे रहते हैं बिना मतलब। ये सब नीच चेतना के लक्षण हैं। तो सीखना चाहिए वत्सपाल होना, गोपाल होना, गायों का पालन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म। तो भगवान गौओं को बछड़ों को पानी पिलाकर तब पानी पिए। इन सब बातों से हम लोगों को सीख लेना चाहिए वास्तव में। तो जब बछड़े पानी पी लिए और उसके बाद बच्चे पानी पी लिए उस सरोवर के निकट, तो वहां जहां वे लोग पानी पी रहे थे उसके निकट ही एक अद्भुत जीव देखे हुए बच्चे। अद्भुत जीव था, बक के आकार में था, बगुला के आकार में था, लेकिन ऐसा बड़ा बगुला तो देखे नहीं था। वज्र से गिराए हुए किसी पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, भारी और बिल्कुल सफेद पंख। ध्यानी जी बैठे थे, एकदम सफेद पंख थे और दिखा रहा था कि मैं बिल्कुल सत्वगुण में। हरीश्वर जी कहते हैं कि इस तरह से जो बाहर से बिल्कुल उज्जवल दिखते हैं और भीतर भगवान के भजन क्या, भगवान को ही खाना चाहते हैं उनको भगवान फाड़ देते, चीर देते पाखंडियों को। तो बक के आकार में था, बब करोती इति बक, बकुला बब करता रहता है जहां था, इसलिए उसको बक कहते। सुने हैं ना बक, इसका उच्चारण के अनुसार, बोली के अनुसार उसको नाम दिया गया है। और भी पक्षियों को, जैसे पीक, कोयल को पीक कहते, पी पी करोती, जरा महीन अल्फाबेट है बहुत, प और कौआ को काक कहते हैं, का 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 बोलता रहता है, का का करोती थी काक। तो बहुत भद्दा मोटा शब्द बोलता रहता है ये बगुला। लेकिन बगुला का ध्यान बहुत प्रसिद्ध है, वो एक पैर पर खड़ा होकर के सरोवर में या नदी के तट पर ध्यान किया करता है। ध्यान किसका? मछली का ध्यान करता है कि उसके निकट रेंज में आ जाए, और बस उसकी बड़ी बड़ी चोंच होती है, गप से मारता है, खा लेता है, फिर ध्यान चालू। और मछलियों को ये पता नहीं चलता है कि यहाँ बाबा जी ध्यान कर रहे हैं, ये पता नहीं होता है। और वो तो आते ही रहते, समझते हैं कि कोई लकड़ी खड़ा है चाहे कोई पत्थर का टुकड़ा है, इतना निश्चेष्ट ध्यान काष्ठ मौन लेकर ध्यान करता। अभी भी आप कोई भी देख सकते हैं वास्तव में उसका खड़ा होना निश्चेष्ट। भगवान ने ये बुद्धि सभी जीवों को दिया है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। तो वह बक के रूप में असुर आया, उसने सुना, वो पुतना का भाई था, खास सहोदर भाई, अघासुर भी भाई था पुतना का, ऐसे ऐसे भाई बहन जन्मे थे। जो भगवान को मारने जा रहे हैं, क्या करे, असत संगति में सब पड़ गए थे, कंस के संगति में पड़ गए थे।